को अलंकृत किया भगवान ने अपने आविर्भाव से, भगवान श्री रामचंद्र ने। इस वंश के साथ सोम वंश का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी विवस्वान के वंश का वर्णन करके सोम के वंश का वर्णन करते हैं। क्या संबंध है? संबंध इस प्रकार का है कि महाराज मनु के सबसे पहले पुत्र थे सुद्युम्न। ऐसे प्रारंभ में, शुरू में वे एक कन्या के रूप में जन्म लिए, जिसकी कथा इस स्कंध के प्रथम अध्याय में दी गई है। कन्या के रूप में जन्म लिए, लेकिन वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु से विनय किया, यज्ञ किया, तो भगवान के आशीर्वाद से वह कन्या, जिसका नाम इला था, सुद्युम्न नामक पुरुष में परिणत हो गई। परंतु इलावृक वर्ष में जाने के कारण वहां सुद्युम्न पुनः कन्या हो गए, पुनः स्त्री हो गए। भगवान शिव की आराधना की गई, पुनः इसको पुरुष बना दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यह एक महीना पुरुष रहेगा, एक महीना स्त्री, दोनों रक्षा होनी चाहिए। भगवान शिव ने जो कह दिया था वो भी रक्षित हो, और ब्राह्मणों ने जो यज्ञ में संकल्प किया था स्त्री प्राप्त करने, कन्या प्राप्त करने का, वह भी सत्य हो, इसलिए भगवान शिव की यह व्यवस्था हुई, एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष। इस दशा में जब सुद्युम्न थे, स्त्री हो गए थे, और उनका नाम इला था, तो प्रारंभ में ही इला ही थे, स्त्री ही कहिए उसको। जिस समय सुकुमार वन में, मेरु पर्वत के सुकुमार वन में वह कन्या भ्रमण कर रही थी, उस समय सोम के पुत्र दूध है उसको सौंदर्य पर रिझ गए, और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया, और उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ इला का पुत्र होने से उसका नाम हुआ आयल। कथा आएगी आगे चलकर। और उनका यश बहुत बढ़ा। संस्कृत में रावा शब्द का अर्थ होता है यश, यश शब्द। महाराज आयल की कीर्ति सारे विश्व में, ब्रह्मांड में फैली थी, इसलिए उनका नाम हुआ पुरु रवा। सोम वंश की भूमिका बताते हुए, सोम वंश का वर्णन प्रारंभ करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, सोमस्य पावनः वंशः श्रूयताम्। सोम के पावन वंश का वर्णन सुनिए। बहुत ही विशिष्ट बुद्धि से और परम अनुराग के साथ श्रील सुखदेव गोस्वामी इस वंश का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। वंश की विशेषता बताते हुए सबसे पहले पावन शब्द लगा रहे हैं। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। पावन शब्द का ऐसे अर्थ है, हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्नान नहीं किया है तो उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है, शरीर पर गंदगी लगी रहती है, जब वो अच्छी तरह से स्नान कर लेता है तो कहा जाएगा कि पावन हो गया। स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार मिलता है, शुद्धि होती है, बिना स्नान के नहीं जा सकता। इस प्रकार जैसे शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से, नहाने से, इसी प्रकार आत्मा की, मन की शुद्धि होती है कुछ मंत्र जपने से और दिव्य शब्दों को सुनने से और बोलने से। खास करके भगवान की कीर्ति को यदि बोला जाए या कानों में डाला जाए तो आत्मा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, और ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्तों की कीर्ति है। भगवान का यश जितना पावन करता है उतना ही भक्तों का यश भी। यह पावन शब्द का अर्थ है कि जीवों के भीतर मनुष्यों के मन में जो विषय भोग की लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, वे तत्काल ही श्रवण मात्र से शांत हो जाती हैं, प्राय मर जाती हैं। यही है जीव का स्नान, इसकी शुद्धि। वैसे आत्मा में और कोई वस्तु मिलाई नहीं जा सकती है, लेकिन उसकी चेतना दूषित हो जाती है। तो चेतना की शुद्धि पवित्र यश सुनने से होती है। इस सोम वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए, वास्तव में उनका नाम सुनने से ही शुद्धि आती है, फिर चरित सुना जाए तब तो कहना ही क्या है। क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बार हो गया बंद करो, सुनो तुम लोग। विशेषकर उन लोगों के लिए यह प्रसंग बहुत ही उपाध्याय है जो भक्त हैं, धर्म मुमुक्षु भक्त हैं, चाहते हैं मुक्त होना दोषों से, सांसारिक कामनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रसंग बहुत ही सुंदर है। यह है पावन शब्द का अर्थ। और इस प्रसंग को प्रारंभ करते समय श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से लगता है जैसे आग्रह कर रहे हैं, श्रूयताम, सुना जाए। तो महाराज परीक्षित तो सुन ही रहे थे, फिर बहुत धीमी आवाज हो गई। पहले तो ठीक आ रहा था, चित परम उत्कंठा से सुन रहे थे। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वे कर रहे थे। महाराज परीक्षित के उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि साधन है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको कहा है। महाराज परीक्षित से कहते हैं श्रूयताम, सुना जाए सोम के पावन वंश को। इस श्रवण शब्द पर मुझे स्मरण आ रहा है एक श्लोक, श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षं च विन्दति। सुनने से ही व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है, हमें क्या करना चाहिए, जीवन में साध्य क्या है और उस साध्य कैसे प्राप्त हो सकता है, क्या हम करें क्या न करें, इन बातों की जानकारी सुनने से होती है। श्रुत्वा धर्मं विजानाति। संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको अपने वास्तविक कर्तव्य का ही ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए। जन्म मिल गया है तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो बिना सिखाए जान जाते हैं, खाना चाहिए, सोना चाहिए, पीना चाहिए इत्यादि, घर द्वार बनाना, कमाना, खाना, ये तो अपने आप सीख जाते हैं। परंतु मनुष्य जीवन का जो वास्तविक कर्तव्य है उसकी स्वतः जानकारी नहीं रहती है, तो सुनने से धर्म का ज्ञान होता है। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, और सुन करके ही व्यक्ति क्या नहीं करना चाहिए उसको जानता है और त्याग करता है। दुर्मति, दुर्मति का अर्थ दूषित बुद्धि। दूषित बुद्धि का अर्थ है भगवान को न जानना और संसार को ही भोगने का प्रयास करना, भगवान को नहीं पसंद करना, भगवान का रूप रंग, उनका शब्द, वे गीता बोले हैं या और ग्रंथों में कुछ बोले हैं, तो भगवान के शब्द, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, ये सब मन में नहीं उदित होना और संसार के रूप रस गंध आदि हमेशा मन में उदित रहना और उसी के लिए प्रयास करना, इसको दुर्मति कहते हैं। दूषित मति, अशुद्ध बुद्धि। तो सुनने से ही, भगवत कथा सुनने से ही दूषित मति दूर होती है, तब संसार का आग्रह चला जाता है। और श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, और सुन करके ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से ज्ञान का अर्थ है भगवत अनुभव, भगवान के रूप गुण लीला आदि का अनुभव प्राप्त होता है। यदि भगवान के ज्ञान, भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो मनुष्य अज्ञान में कल्पना करता है, और कल्पना ही नहीं करता है, प्रचार भी करता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि इस प्रचार की कोई बहुत आवश्यकता है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। यह अद्भुत है, निगेटिव प्रचार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो ये क्यों नहीं कह देते कि भगवान है ही नहीं, सीधा कह देना चाहिए। तो भगवान के रूप गुण लीला आदि हैं, उनका अनुभव चाहिए, उस अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, पुरुष सुनने से ही ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि जब जन्म मिलता है संसार में तो अज्ञान तिमिरांध रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाद में भी कोई बताता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, बहन है, और इस देश में जन्म लिए हो, इस काल में जन्म लिए हो, तब पता चलता है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला में जो लोग बहुत अज्ञ थे, जैसे बच्चे और कुछ स्त्रियां, तो उनके स्वजन उनके पाकिट में कागज लिख करके दे देते थे, चाहे साथ देते थे, कि अगर वे भूल जाएं गाय बैल की तरह तो दूसरे लोग पहुंचा देते थे पढ़ करके कि यहाँ का है, क्योंकि स्वयं पता नहीं चलता था कि हम कहाँ आकर रुके हैं और कहाँ गांव है, कहाँ घर है। तो वहाँ मेला पुलिस पढ़ करके भूले भटके शिविर में ले जाते थे, वहाँ अनाउंस करते थे इस तरह से। हम लोग भी तो ऐसे ही, अपना पता नहीं है कि कहाँ थे। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है और गीता में कि आप कहाँ के हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, सब मेरे अंश हैं, अर्थात मेरे पुत्र हैं, मेरे संबंधी हैं। लेकिन मूर्खता बस जीव है, भगवान का अनुभव नहीं कर पाता है और कहता है हम दूसरे के हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं, इसके हैं। तो भगवान अवतार लेकर इस जगत में स्पष्ट बताते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं सब कुछ हूँ, वासुदेव सर्वमिति, मैं सब कुछ। इसका जो अनुभव होता है तो इसको ज्ञान कहते हैं, परंतु बिना सुने ज्ञान नहीं होता। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, सुनने से ज्ञान हो जाता है। स्कूल में और कॉलेज में लड़के जाते हैं, क्या करने जाते हैं, उनका मुख्य धर्म वहाँ है सुनना, सुनने के लिए जाते हैं, और सुन करके संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीने की कला सीखते हैं। भगवान के विषय में भी श्रवण ही प्रधान है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम च विन्दति, और श्रवण करके ही जीव मुक्त होता है। बंधन पड़ा है हम लोगों पर, हम बाध्य हैं जन्म लेने के लिए, मरने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, बारंबार शरीर बंधन और नाना प्रकार की कामनाएं, उसे बंधन है। और अधिकांश मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि वे बंधे हुए हैं, बंधन का पता भी नहीं लगता है कि हम बंधे। कई कई प्रकार का बंधन है, घर गृहस्थी का बंधन है, देह का बंधन है, मनोबंधन है, काम क्रोध लोभ से बंधन ही बंधन है चारों तरफ। इन दोषों से, माया के बंधन से मुक्त होना, इसको मोक्ष कहते हैं, और अपने स्वरूप में होना, तो सुनने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम च विन्दति। ये श्रुत्वा श्रुत्वा शब्द बता रहा है कि जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शास्त्र श्रवण, और उसमें भी श्रीमद् भागवत है। शास्त्रों में भी सुनने लायक सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है भागवत। तो यहाँ पर भक्तों ने आयोजन किया है और गांव के सब लोगों ने मिल करके, ये बहुत अच्छा कार्य है, यही जीवन का वास्तविक कार्य। तो महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन आप सुनिए, वंश का परिचय देते हुए प्रारंभ में कहते हैं जस्मिन अयला दयो भूपा कृत्यंते पूर्ण कीर्तय। इसे वंश में महाराज सोम के वंश में जो इस समय चंद्र लोक के स्वामी है उनका नाम है सोम, जो सूर्य लोक के स्वामी है उनका नाम है विवस्वान, और जो चंद्र लोक के इस समय स्वामी है वर्तमान उनका नाम है सोम। तो सोम वंश को भगवान ने अलंकृत किया, स्वयं भगवान ने अपने आविर्भाव से इस वंश को परम धन्य किया, और विवस्वान के वंश को भगवान श्रीराम ने अपने जन्म द्वारा धन्य किया। ये दो कुल बहुत ही पवित्र है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं कि इस वंश में ही महाराज आयल हुए, और अंत में जब भगवान श्री कृष्ण इस वंश में आए तब तो कहना ही क्या इसकी पावनता का। एक ही श्लोक में पूर्ण कीर्तय और पावन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वंश पावन है, राजाओं की कीर्ति पावन है। सुनिए, इसका अर्थ यह हुआ कि इन राजाओं का यश सुनने से भगवान में प्रेम होता है, संसार की वासनाएं समाप्त होती है। तो कोई भी वंश से भगवान से प्रारंभ होता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। किस प्रकार भगवान गर्भोदक शाही से सारे वंश चलते हैं, सभी जीव उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में तृतीय स्कंध में विस्तार से किया गया है। भगवान से ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी अनेक ऋषियों को जन्म दिए, और वे ऋषि मुनि फिर बहुत प्रकार की सृष्टि विस्तार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, सहस्र शीर्ष पुंसो नाभि हृद सरोरुहात जातस्य सुतो धातु अप्रिहि पित्रि समोगुणहि। सहस्र शीर्षा भगवान गर्भोदक शाही के नाभि से एक सरोरुह जन्म लिया, एक कमल निकला, और उसी कमल से जातस्य जन्म लिए धाता ब्रह्मा जी, इस विश्व के निर्माता और इस विश्व की व्यवस्था देखने वाले श्री ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। सोम वंश की शुरुआत बताई जा रही है। आप ध्यान रखिए कि आगे चल करके मैं किसी को खड़ा करा करके पूछूंगा कि इसके पहले कितना वंश गिना चुका है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। वंश प्रवर्तक हैं भगवान नारायण, गर्भोदक शाही भगवान विष्णु जो इस ब्रह्मांड के गर्भ में जल में शयन करते हैं। नाभि हृद सरोरुहात, भगवान के नाभि को ही हृद कहा गया, कमल हृद में खिलता है, दह में, नदी में, तो भगवान का नाभि ही हृद है। तो नाभि हृद सरोरुहात, भगवान के नाभि रूपी हृद से, दह से एक सरोरुह निकला, कमल जन्म लिया, और उसी कमल से जन्म लिए ब्रह्मा जी। तो वैसे ब्रह्मा जी का अनेक पुत्र हुए, लेकिन जिस वंश में सोम जन्म लिए उस वंश को बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए अत्रि। अत्रि गुणे पित्री समह, सब प्रकार के गुणों में अत्रि जी अपने पिता के समान थे, ब्रह्मा जी के समान थे, यही है अत्रि जी की विशेषता। इसके पहले ब्रह्मा जी की कीर्ति का वर्णन हो चुका है, दूसरे स्कंध में, चौथे स्कंध में और बीच बीच में अन्य स्कंधों में भी ब्रह्मा जी की महानता और उनके विविध गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर वे गुण नहीं दिए जा रहे हैं, बस इतना कहा जा रहा है कि अत्रि गुणों में अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के समान है, पितृ समह गुण है। यह समझ लेना चाहिए कि सृष्टि प्रवाह जो आ रहा है, तो जैसे जैसे सृष्टि का क्रम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जीव गुणहीन होते जा रहे हैं, उनके जो सद्गुण या दीर्घ उम्र, ज्ञान, धन सब खत्म होता जा रहा है जैसे जैसे सृष्टि विस्तार हो रही है। प्रारंभ में बहुत ज्ञान रहता है जीवों का, क्योंकि भगवान से संबंध रहता है। अत्रि की विशेषता बताने के लिए उनको उनके पिताजी से जोड़ा जा रहा है, और ब्रह्मा जी की विशेषता क्यों है, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं। तो भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि। अत्रि एक बार भगवान का स्मरण करके पुलकित थे और इतना आनंद आ रहा था कि उनके आंखों से आनंद के आंसू चू रहे थे, और उसी आंसू को रोककर माता अनुसुईया ने पिया था। वह अमृतमय आंसू था, भगवान का स्मरण करके जो आंसू निकल रहा था तो अपने आप में वह दिव्य था, प्रेम के आंसू, और उसी को अनुसुईया ने पिया और वो गर्भवती हुई थी। उसी आंसू से सोम का जन्म हुआ, अनुसुईया जी ने जन्म दिया। तस्य दृग्भ्यो भवत् पुत्रः सोमो अमृतमयः किल। सोम वंश का वर्णन किया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए किस प्रकार सोम जन्म लिए। ये सोम अपने पिता के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए थे, अत्रि जी के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए थे, के आंसू से उत्पन्न हुए थे, स्नेह के, भगवत प्रेम के आंसू थे। यह अद्भुत बात कही जा रही है, तस दृग्भ्यो अभवत् पुत्र सोमो अमृतमय। और एक और भी विशेषता बताई जा रही है कि अत्रि ऋषि बारंबार भगवान के प्रेम में आंसू बहाए थे, इसलिए उनके नेत्रों का वर्णन बहुवचन में दिया जा रहा है। दृग्भ्याम न कहकर दृग्भ्य कहा जा रहा है, दृग्भ्य आंखों से, दोनों आंखों से नहीं कहा जा रहा है, आंखें दो ही थी, लेकिन चूंकि बारंबार वे आंसू बहाए थे और उन आंसुओं को माता अनुसुईया जी ने बारंबार पिया था, इसीलिए आंखों का वर्णन बहुवचन में दिया जा रहा है। तो पुत्र हुए सोम, सोम अमृतमय हुए। अमृतमय कहने का आशय यह है कि वास्तव में इस संसार में देखा जाए तो भगवान का स्मरण करके जो आंसू निकलता है वही वास्तविक अमृत। इस कारण से चंद्रमा अमृतमय हुए, सोम अमृतमय हुए, अमृतमय अकेला निर्विवाद। ब्रह्मा जी इनके गुणों को देखकर, सोम के गुणों को देख करके इन्हें प्रधान बनाए। किनका किनका प्रधान? समस्त ब्राह्मणों का और समस्त औषधियों का। औषधि का अर्थ जितना भी फूड कॉर्पोरेशन, जितना अन्न विभाग है विश्व, जो भी अन्न उत्पन्न होता है, घास, पेड़ पौधे, फल फूल, जो कुछ भी, इसके ये स्वामी बनाए गए, क्योंकि सोम ही अपनी अमृतमय किरणों से इनको पोषते हैं। और उडू गणाना ताराओं के पति भी बनाए गए, नक्षत्रों के अधिपति। नक्षत्रों के अधिपति का अर्थ यह है कि ऊपर के लोकों में जितने भी देवता रहते हैं, जीव रहते हैं, सबके स्वामी सोम बनाए गए। नक्षत्रों के अधिपति और औषधियों के अधिपति तथा ब्राह्मणों के अधिपति, इस तरह से यह इनके कुछ आधिपत्य का वर्णन किया गया है। यह एक दिग्दर्शन हो रहा है शाखा चंद्र न्याय से। यहाँ तत्पर जो है जितने भी वैदिक ज्ञान को धारण करने वाले लोग थे सबके ऊपर ये बनाए गए। एक प्रकार से कहिए वाइस चांसलर या डीन, सबके जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस समय शास्त्रों के विद्वान सबके ऊपर उनका कंट्रोलर इनको बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान में भी सोम बहुत उत्कृष्ट थे और चूंकि अमृतमय थे इसलिए अन्न विभाग फल विभाग या तृण विभाग सारा इनके ही आश्रय में था, इसके पति बनाए गए। और नक्षत्रों के देवताओं के भी स्वामी बनाए गए। उन ऊपर के लोकों में रहने वाले जो लोग हैं नक्षत्रों में ताराओं में उनके पति बनाए गए। और किसके द्वारा बनाए गए? ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए। ब्रह्मा जी के द्वारा कोई चूक नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि, भगवान का दिया हुआ नाम है। विधि का ये अर्थ है कि ब्रह्मा जी जो करें वही उचित है। ऐसा सुयोग्य व्यक्ति हो जिससे गलती हो ही नहीं सकती है, इसीलिए भगवान ने उनका नाम ही दे दिया विधि। जैसे विधि निषेध आपने सुना है तो ब्रह्मा जी मूर्तिमान विधि, ऐसे ब्रह्मा जी अपने ज्ञान से अपनी समझ से चंद्रमा को इन सब का पति बनाए। और जब सोम औषधियों का अनाज आदि का राजा बनाए गए तो इन्होंने एक राजसीय यज्ञ किया। समस्त औषधियों का राजा बनाए, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, ब्राह्मणों का राजा बनाए गए और नक्षत्रों का राजा, तो ये मनुष्यों के लिए थोड़ा सा समझने में कष्ट है, लेकिन रोज रोज भोजन करने वाले लोग समझ सकते हैं कि अनाज का कितना महत्व है और अन्न को पालने वाले पोसने वाले स्वामी सोम को बनाया गया। एक दिन में कितना अन्न लगता होगा सारी दुनिया में जोड़ा जाए, चना गेहूं मटर चावल टमाटर भिंडी गोभी साग सब्जी और दुकानों में कहीं कहीं भरा हुआ है ड्राई फ्रूट्स सूखा मेवा या हरा मेवा जो भी हो और घास, यही सब खा करके प्राणी जीवित रहते हैं। नट बोल्ट खा करके जीवित नहीं रहेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं। खाने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुएं चाहिए, इसको देने वाले सोम हैं। यदि सोम न रहे तो एक दाना भी नहीं हो सकता है पृथ्वी पर, एक घास नहीं उग सकती। तो सोम इसके अधिपति बनाए गए ब्रह्मा जी के द्वारा। सो यजद राज सु ये न विजित भुवन त्रयम, इतने योग्य राजा थे और प्रतापी कि महाराज सोम भुवन त्रयम विजित्य, तीनों भुवन को जीत लिए अपने वश में कर लिए और राजसूय यज्ञ किया, भगवान की आराधना किए। राजसूय न अजत, अब देखिए किसी व्यक्ति के पास अति बहुत अधिक धन हो जाए बल हो जाए सब प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए, इस प्राकृत जगत का स्वरूप है कि उसमें जरूर दोष आ जाता है। इतने शुद्ध और महान सोम के भी अतिक्रमण का वर्णन किया जा रहा है, इनके भीतर बड़ा दर्प आ गया। दर्प, दर्प का अर्थ होता है किसी अंकुश में नहीं रहना, अपने को बहुत बड़ा मान लेना। चूंकि ये बड़ा थे ही अतः ये बहुत बड़ा अपने को मान लिए और इन्होंने अपने गुरु की पत्नी का अपहरण कर लिया और वो अभी चुरा करके नहीं बलात् सामने गुरु के, बृहस्पति जी इनके गुरु हैं और उनके पत्नी का इन्होंने अपहरण किया। वास्तविक बात यह है कि बृहस्पति जी के द्वारा जो अपने छोटे भाई की पत्नी ममता के साथ असद व्यवहार हुआ तो उत्तप्त बड़े दुखी थे और उन्होंने महाराज सोम को प्रेरित किया। तो सोम तो ऐसे ही बहुत बड़े राजा थे तीनों लोक के, तो उन्होंने हरण कर लिया अपनी गुरु पत्नी का। यहाँ सुखदेव गोस्वामी शब्द कर पत्नी बृहस्पतिर दर्पात ताराम नामा हरत बलात, दर्पात बलात शब्द का प्रयोग किया गया। अत्यधिक अभिमान के कारण अपने गुरु पत्नी का अपहरण किए। और ये प्रश्न होता है क्या चोरी से अपहरण किए? नहीं नहीं, बलात् बल से हरण किया। और इसके बाद देव गुरु बृहस्पति जी बारंबार इनसे याचना किए कि मेरी पत्नी लौटा दो, फिर मेरी पत्नी लौटा दो, लेकिन नहीं। एक बात पर सबको शंका हो सकती है कि सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में सोम के वंश को परम पावन बता रहे हैं, तो गुरु पत्नी के साथ गमन करना यह कौन सी पावनता है? ये सोचने लायक बात। इसी से प्रारंभ में ही ये भूमिका दी गई है, जो भी घटनाएं हो रही हैं ये सब ईश्वरीय विधान से हो रही है, सावधान रहना चाहिए। आज भी सोम है जिनके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है, और आज भी वे उसी पद पर हैं, उन्हीं के द्वारा सबका पोषण हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो गुरुपत्नी का अपहरण किया उसके पीछे वास्तव में ईश्वरीय विधान था। आगे आप इसको देखेंगे तो दर्प से और बल से इन्होंने हरण किया। और यदा सदेव गुरुणा याचितो अभिक्षणसो मदात ना त्यजत, जदा देव गुरुणा सब अभिक्षणस याचित। देव गुरु बृहस्पति जी ने देखा कि सोम के साथ युद्ध करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये परम बलवान है, तो ये याचना किए अपनी पत्नी लौटाने की, जैसे रावण से याचना की जाती थी कि सीता को लौटा दो, लेकिन नहीं लौटाए। याचना की जाते, कौन याचना कर रहा था? देव गुरु। देव गुरु थे तो सोम के भी गुरु थे, सोम के भी गुरु थे, देवताओं के गुरु थे, और वो भी अभिक्षण सा बारम्बार वे निवेदन किए, बारम्बार प्रार्थना किए कि हम लौटा दो। याचिका, आलोचना नहीं कर सकते थे कि तुमने गलत किया है, ये किया है, हमारी पत्नी लौटा दो, उनकी याचना। यह अद्भुत बात है, कितना प्रबल प्रताप सोम का था कि देव गुरु बृहस्पति जी याचना कर रहे हैं। लेकिन जो बारंबार याचना करने के बाद भी प्रत्यार्पण नहीं किए तारा को, इनकी पत्नी का नाम था तारा, तब इसके कारण सुर दानव विग्रह यज्ञ देवताओं में और दानवों में बहुत बड़ा युद्ध हो गया, हुआ उत्पन्न हो गया विवाद, कलह उत्पन्न हो गया। क्यों नहीं त्यागे तारा को? तो कहते मदात, एक ही संदर्भ में देखिए, दर्पात बलात मदात इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मद से नहीं त्यागे, मद का अर्थ होता है प्राकृत पोजीशन से, प्राकृत वैभव से जब व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है और दूसरे का अपमान करता है, ठीक ठीक कर्तव्य का बोध नहीं होता है, तो इसको मद कहा जाता है। सोम को यह भी ध्यान नहीं रहा कि बृहस्पति जी की पत्नी है, और यह भी ध्यान नहीं आया कि वे याचना कर रहे हैं, और इन सब बातों का भी ध्यान नहीं रहा कि मैं गलत पथ पर जा रहा हूँ, असत पथ पर जा रहा हूँ, क्योंकि उनके भीतर मद था। जैसे शराब पी लेने के बाद किसी व्यक्ति को कभी कभी पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या बोल रहा हूँ, तो इसी से शराब को मद कहा जाता है। नहीं, जो मद नहीं कहा जाता, जो मद में डाल दे उसको मद्य, जो मद में कर दे, अनुसंधानहीन कर दे, उसको मद्य कहते हैं। तो मद शब्द मूल है। कोई ध्यान ही नहीं था, कोई भय था न लज्जा थी और न तो परलोक का डर था, इसको मदाद कहते हैं। मद के कारण हमें नहीं त्यागा। इस कारण से देवताओं में और दानवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध उत्पन्न हुआ। यहाँ प्रश्न होता है कि बृहस्पति जी और सोम में कलह था तो देवता और दानव आपस में क्यों लड़ने लगे, ये क्यों जुट गए? इस संसार का ये स्वभाव है, बिना मतलब के कोई इस पक्ष में कोई इस पक्ष में हो जाते हैं। देखिए कौन कौन किस पक्ष में हुआ। शुक्रो बृहस्पतिर द्वेषाद अग्रहित सासुरो लुपम। शुक्राचार्य स्व असुर उदुपम जग्रह, समस्त असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष लिए, सोम का पक्ष लिए। कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से कोई भी कलह नहीं था बृहस्पति जी का, मतलब इस संदर्भ में। वैसे तो सदा के बैरी हैं शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। दोनों एक विरुद्ध पक्ष के गुरु है परस्पर, अतः द्वेष तो अपने आप ही आ जाएगा। देवासुर संग्राम में वर्णन है, अमृत पीने के बाद देवता लोग जब युद्ध कर रहे थे तो वहां वर्णन है कि बलि और इंद्र युद्ध कर रहे थे तो उसी समय बृहस्पति जी और शुक्राचार्य युद्ध कर रहे थे। तो शुक्राचार्य और बृहस्पति जी वैदिक मंत्रों से युद्ध कर रहे थे डिफीट करने के लिए, परास्त करने के लिए, इस तरह से जाप कर रहे हैं। इस तरह के झगड़ा होते हैं। वैदिक मंत्र बोलते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, वो दब जाए, वो मर जाए, हम बढ़ जाए। अब जैसे इस समय मान लीजिए स्त्रियां झगड़ा करती हैं तो क्या करती हैं, वही सुक्त दुरुक्त से झगड़ा करती हैं, न हाथ चलाती हैं न लात चलाती हैं, लेकिन वचन पर गोलियां चलती रहती हैं, खूब चलती रहती। और यदि अपना फायरिंग लास्ट में हुआ तो उसको विजय माना जाता है। प्रतिपक्ष यदि चुप हो जाए तो वो स्त्री सोचती है कि मैं जीत गई, बस मेरी अंतिम बोली रह गई। इस तरह झगड़ा करते करते कभी कभी रात में वो दो तीन भी बजा देती, ये देखा गया है। तो शुक्राचार्य नाहक पक्ष ले लिए सोम का। देखिए ये राजनीतिज्ञ थे, राजा थे, इसीलिए शुक्राचार्य से उन्होंने कहा कि हमको तंग कर रहा है बृहस्पति, आप हमारी सहायता कीजिए। तो उन लोग शुक्राचार्य का धर्म था कि वे डांटे सोम को कि उनकी पत्नी लौटा दो, लेकिन ये कहे ठीक है ठीक है, जितना पलटन था दैत्यों का सब लेकर के चलो, उनके गुरु है ही, उन्होंने कहा कि बस चलो बृहस्पति से कला। शब्द देखिए प्रकरण में आ रहा है, पहले आया दर्पात, उसके बाद बलात्, इसके बाद मदात, अब द्वेषात। बृहस्पति से द्वेष होने के कारण शुक्राचार्य ने पक्ष ले लिया सोम का, द्वेष। और भगवान शिव पक्ष लिए बृहस्पति का। सर्वभूत गणावृत, भगवान शिव कैलाश से अपने सारे भूत प्रेतों का पलटन लेकर चल दिए बृहस्पति की ओर से। प्रलयंकर शंकर जो प्रलय करते हैं, जब प्रलय होता है तो वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के पार्षद सारे संसार में आग लगाना चालू करते हैं जलाने के लिए, और वे भी तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो सारा संसार जलकर राख हो जाता है। बहुत शक्ति है भगवान शिव में। वे स्नेह से, स्नेहात शब्द है, वे स्नेह से गुरु पुत्र का साथ दिए, ऐसा वर्णन है पुराणांतर में कि भगवान शिव कोई एक विद्या अंगिरा जी से पढ़े थे। अंगिरा जी से पढ़े थे तो ये गुरु पुत्र हुए, बृहस्पति जी गुरु भाई, तो गुरु भाई का साथ दिए स्नेह से। इनको भी कोई मतलब नहीं था झगड़ा से, लेकिन स्नेह से आ गए युद्ध में, और शुक्राचार्य द्वेष से आ गए। ये ध्यान रखना चाहिए कि दैत्यों की सेना फिर भी बलवान थी, अभी मतलब तो शुरू से ही बलवान है, और उस पर भी राजा सोम का आश्रय मिला हुआ है। ये दो तो उदाहरण दिए गए कि बृहस्पति के पक्ष से भगवान शिव और सोम के पक्ष से शुक्राचार्य समस्त दानवों के साथ, और फिर तीसरा दे रहे हैं सर्व देव गणों पे तो महेंद्रो गुरु मनोयात। और चूंकि बृहस्पति जी अपने गुरु हैं, इसलिए महेंद्र अर्थात भगवान इंद्र साथ दिए अपने गुरु का सभी देवताओं के साथ। एक स्त्री के लिए सारा विश्व झगड़ा में पड़ गया, विश्व युद्ध था। ये विश्व युद्ध नहीं था, ब्रह्मांड युद्ध था वास्तव में। विश्व युद्ध इसके आगे क्या है? एक स्त्री के लिए सारा विश्व ही कलह में फंस गया। जब कैलाश से भगवान शिव आ गए युद्ध के मैदान में, और उधर से सारे असुर जुट गए, सारे देवता इंद्र आदि, तो कितना बड़ा युद्ध होगा सहज समझा जा सकता है। और युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, सुरासुर विनाशो भूत समरस तारकामय। सुरासुर विनाश भूत, देवताओं का भी विनाश हुआ और दैत्यों का भी विनाश हुआ। युद्ध में विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा? विनाश माने विशेष नाश, विनाश। युद्ध में कौन निर्माण होता है? बहुत बड़ा विनाश हुआ। कहने का आशय है कि उस महायुद्ध में बहुत से लोग मर गए, वीर गति को प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो युद्ध क्या था? तारकामय युद्ध था। तारकामय, तारकामय, तारकामय का अर्थ है कि तारा के लिए कितने लोग मर गए। और स्थिति जो थी वही बनी की बनी रह गई। बहुत बड़ा विनाश हुआ, बहुत बड़ा विनाश हुआ। तब बृहस्पति जी ने निवेदन किया, नहीं अंगिरा जी ने निवेदन किया, पहुंचे बृहस्पति जी के पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास। ये तो सारे देवता और असुर और शिव जी की सेना सब लड़ करके मर रहे हैं, और आप चलिए रोकिए, आप विश्व गुरु हैं, आप विश्व के जन्मदाता हैं, आपके कहने से युद्ध रुक जाएगा, और गलती तो सरासर सोम कर रहा है। वो तो कहेंगे अपने, और गलती तो वास्तव में सोम की थी। तो बृहस्पति जी के पिताजी जाकर ब्रह्मा जी से अपने पिता से कहे, निवेदितो अथ अंगिरसा, जाकर निवेदन की। अथ शब्द का अर्थ है कि इतना बड़ा विनाश हो गया, उसके बाद जाकर कहे। सुखदेव गोस्वामी कहने का आशय है तो ये था है कि पहले ही क्यों नहीं जाकर कह दिए, युद्ध से पहले कह देना चाहिए, लेकिन नहीं कहे। जब बहुत बड़ा विनाश हो गया तब अब कम। निवेदितो अथ अंगिरसा सोमम निभत विश्व के, ब्रह्मा जी खूब डांटे, निर्भर्षण, नितराम भर्षण किए, बहुत अधिक डांटे और बुरा भला कहे, और धमकी भी दिए कि अगर ऐसा करोगे तो आज ही हटा दूंगा इस पद से, ये करूंगा वो करूंगा। भर्सना किए और तारा को लेकर दे दिए बृहस्पति। ब्रह्मा जी की डांट को सोम ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि विश्वकृत, ब्रह्मा जी इस विश्व के जन्मदाता, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। कहने का आशय यह है कि चंद्रमा ने सोम ने अदब किया है, उनका आदर किया है। कम से कम यह कार्य तो सोम ने किया, ब्रह्मा जी से नहीं लड़ बैठे। क्रोध में आदमी होता है, कहता है तुम पक्ष ले रहे हो बृहस्पति का, ये कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन उन्होंने माना बात और त्याग दिए, दे दिए गुरु पत्नी को। तारम सौभक्त प्राय अक्षर अंतर्वर्ती नवपति, तो ब्रह्मा जी उसको मुक्त किए, तारा को सोम के बंधन सोम के यहाँ से लिए और ले जाकर के दे दिए बृहस्पति जी को। उधर युद्ध चल रहा था लेकिन ब्रह्मा जी आए तत्काल, सोम को डांटे दत्ते और तब युद्ध बंद हुआ। तो जब बृहस्पति जी के पास उनकी पत्नी आई तो देखे कि यह अंतर्वत्नी है। अंतर्वत्नी का अर्थ होता है उसके भीतर बच्चा है, वो गर्भवती है। उन्होंने देखा अपनी पत्नी को, बृहस्पति जी ने गर्भवती देखा, वो क्रोध में हो गए। यह क्रोध उनके लिए उचित नहीं था, तो इतने बड़े प्रयास के बाद और ब्रह्मा जी के आज्ञा से सोम ने त्याग दिया उनकी पत्नी को, तो उससे प्रेम करना चाहिए था। परंतु गुरु जी बहुत क्रोध में थे और उन्होंने कहा उसको, उस स्त्री को, त्यज तेजासु दुष्प्रज्ञ मत क्षेत्राधाहितम करहि। अरे दुष्प्रज्ञ, तुम्हारी बुद्धि बहुत दूषित है, मेरे क्षेत्र में तुमने दूसरे के द्वारा गर्भ धारण किया है, इसको त्यज त्यज आशु, इसको शीघ्र ही त्यागो, शीघ्र ही त्यागो। यह कोई उचित कार्य नहीं था गुरु जी का यहाँ पर। इस तरह से असमय में किसी बच्चे को गर्भ से गिरा देना, यह बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है, इसको हत्या कहते हैं। लेकिन वह तो देवी थी और उसके लिए कोई यह नियम नहीं था कि उसका बच्चा मर ही जाएगा। ये कहते हैं त्यज त्यज त्यागो त्यागो मत क्षेत्र, मेरा क्षेत्र है यह। जो व्यक्ति विवाह करता है विधि के अनुसार तो उसकी पत्नी उसका क्षेत्र मानी जाती है और उस क्षेत्र में वह संतान उत्पन्न करता है। तो मत क्षेत्र मेरे क्षेत्र से परे ही आहितम, दूसरे के द्वारा जो गर्भ हुआ है उसका त्याग करो त्याग करो। तो कांपने लगी भय से कि ये मुझे साथ दे देंगे, मैं भस्म हो जाऊंगी। तब कहते हैं नाहम तम भस्म सात कुरिया, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा, तुम डरो मत, त्वाम अहम भस्म सात न कुरिया, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा। क्योंकि एक तो तुम मेरी स्त्री हो और दूसरी बात यह है कि तुम सती हो और तीसरी बात है कि मैं संतानिक हूँ। संतानिक का अर्थ यह है कि मुझे संतान की इच्छा है, यदि पत्नी को ही साथ देकर जला दूंगा तो आगे मुझे संतान कैसे हो सकते है। अच्छा, बहुत बोलने में कुशल व्यक्ति हैं बृहस्पति जी, तो इसीलिए उन्होंने कहा सती तुम फिर भी पवित्र हो, तुम्हारा दोष नहीं है। जब इतना बड़ा बलवान व्यक्ति तुम्हारा अपहरण किया, तुम्हारे साथ बलात्कार किया, तो तुम क्या कर सकती थी। तो यह है साम नीति, समझाना, सती कहना तुम मेरी बहुत अच्छी पत्नी हो और फिर इतना कार्य करो कि दूसरे के द्वारा जो तुम्हारा गर्भ है इसको त्याग दो। और गुरु बृहस्पति जी को चाहिए था कि वे एकांत में अपनी पत्नी को जो कुछ भी डांटना हो डांटते, लेकिन वे सभा में डांट रहे थे। गुरु जी की बुद्धि फेल हो गई थी, वो समझ नहीं रहे थे, इसका क्रोध में हो गए थे, इसीलिए सभा में कहे। तारा ने गर्भ का त्याग किया और गर्भ है उसके उधर से बाहर आते ही कुमारम, बहुत ही सुंदर एक लड़का हो गया, लगभग 10 वर्ष का है, बहुत सुंदर। देवताओं में यह नियम नहीं है कि प्रसूति गृह में जाकर स्त्री प्रसव करेगी या बहुत छोटा बच्चा उसको पाल पोस करके बड़ा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है देवताओं में। बहुत ही सुंदर कुमार जन्म लिया। तत्याज वृड़िता तारा कुमारम कनक, बेचारी बहुत लज्जित हो गई थी, और उसने त्यागा गर्भ को, वह एक कुमार के रूप में परिणत हुआ और उसकी आभा, उसकी सुंदरता सोने के समान थी। पीत रंग का वह लड़का था, तपाए हुए सोने के समान उसकी प्रभा थी। कहीं कहीं कुछ विद्वानों का ये मत है कि जनक प्रभम काठ है, जनक प्रभम काठ जैसे सोम में तेज है वैसे ही वह भी बच्चा तेजस्वी था, वह कुमार तेजस्वी था। यह कुमार शब्द यही बोध कर रहा है कि लड़का बड़ा हो गया था, गर्भ में छोटा था लेकिन जन्म लेते ही अकस्मात पड़ गया। कनक प्रभम चाहे जनक प्रभम, जनक का अर्थ है यहाँ सोम, कनक का अर्थ होता है सोना, सोना जैसे उसकी दीप्ति थी, बहुत सुंदर था और इसे सहज समझ लिया गया कि ये बहुत बड़ा तेजस्वी पुरुष होगा आगे चल करके। तो ऐसे पुत्र में अब बृहस्पति जी की देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि त्यागो त्यागो गर्भ, और जब इतना सुंदर लड़का देखे तेजस्वी तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं लू, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है। और सोम ने जब देखा कि इतना सुंदर लड़का है तो वो कहे नहीं मेरा लड़का है। तो अब तो स्त्री के लिए झगड़ा समाप्त हुआ, अब उस लड़के के लिए झगड़ा होना और लगा कि फिर से युद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने संधि कराया था लेकिन लगा कि फिर विकराल युद्ध में बदल जाएगा। स्प्रिहम आंगिरसस चक्र, अंगिरा के पुत्र में अच्छा बृहस्पति जी ने उस पुत्र में स्प्रिया किया, उस कुमार में, और सोम एवचा, और सोम ने भी, सोम कहते थे मेरा पुत्र है और बृहस्पति जी कहते थे मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। और दोनों में विवाद चल रहा था, उस विवाद को भी टीकाकारों ने कुछ लिखा है। तो विवाद में बृहस्पति जी कह रहे थे कि मेरी पत्नी से जन्म हुआ है इसलिए मेरा है, और सोम कहते थे नहीं मेरा अंश है, मेरे द्वारा गर्भाधान हुआ है इसलिए मेरा पुत्र है, मैं इसे लूंगा। इतने लोग पुत्र वत्सल होते थे पहले के, ये सीखने लायक बात। आजकल तो लोग गर्भपात करा देते हैं, क्या क्या करा देते हैं, ऐसा राक्षस भी नहीं करते हैं, वास्तव राक्षस भी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। देखिए देवताओं का स्टैंडर्ड, एक कुमार के लिए झगड़ा होने लगा, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी से जन्म लिया है इसलिए मेरा पुत्र है, और सोम कहते थे कि मेरा अंश है इसलिए मेरा है। अब बहुत कलह छिड़ गया, लेकिन बृहस्पति जी यह नहीं कह रहे थे कि ये दूसरे का कुमार है मेरी पत्नी के गर्भ से, वे कलह में कह रहे थे मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। और वे जानते थे कि उनका नहीं है, मतलब उन्होंने गर्भाधान नहीं किया था, वह पुत्र सोम का था, परंतु इससे क्या, जब लड़का गुणवान है तेजस्वी है तो उसको अपना पुत्र बनाना चाहते, कहते थे मेरा पुत्र। मम अयम न तव इति उच्च तस्मिन विबदमान, मम अयम, अयम मम, प्रत्येक व्यक्ति यही कहता था, बृहस्पति और सोम यही कहते थे अयम मम, यह मेरा है, न तव, तुम्हारा नहीं है, इति उच्च, उच्च स्वर से मेरा है तुम्हारा नहीं है, इस तरह से बहुत जोर से विवाद मान है, विवाद छिड़ गए। और इस तरह से दोनों जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे, लगता था कि फिर बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, फिर युद्ध हो जाएगा। तो ऋषि लोग और देवता सब पूछने लगे सभा में, अभी इन लोगों की भी मति मारी गई थी, एकांत में ले जाकर पूछना चाहिए था, तो वो सब पूछने लगा, अरे बताओ बताओ किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, और बेचारी बोल नहीं रही थी। न एवं ऊंचे ब्रीड़िता पुषा, सा ब्रीड़िता, वो तो लज्जिता थी, कैसे समाज में बताती यह किसका पुत्र है, वास्तव में पत्नी तो बृहस्पति जी की थी लेकिन पुत्र तो सोम का था, तो कैसे बेचारी बता दे। और ऋषय देवा, ये भी झुंड के झुंड पूछ रहे थे और समाज में पूछ रहे थे किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, किसके द्वारा गर्भवती हुई हो, किसके द्वारा गर्भवती हुई हो। इस साधारण शिष्टाचार भी भूल गए कि बेचारी से ऐसे नहीं पूछना चाहिए, वो नहीं बता रही थी। इधर झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, उधर ऋषि लोग अपने को विद्वान मानकर सभा में ही पूछ रहे थे तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गलत हो रहा है। तो ब्रह्मा काम रह आहु यह समाप्राक्षित सांत्वयन समस्त्याह शनिकै सोमस्तम तावद अग्रहित। ब्रह्मा जी तो परम विद्वान है व्यवहार में और वेद में सब तरह से। अरे भगवान के साक्षात पुत्र है तो कहना ही क्या, भगवान का पुत्र भगवान ही होगा, भगवान के समान है। हाँ, तो जब ऋषि लोग पूछ रहे थे, देवता लोग पूछ रहे थे और दोनों पिता झगड़ा कर रहे थे, तो कुमार अपनी माँ से बोला, वो भी कुपित हो गया। उसने सोचा कि फिर कलह हो जाएगा, फिर लाखों लोग मरेंगे, इसलिए अपने माँ को डांटने लगा, वो कुपित हो गया। कुमारो मातरम प्राह, कुमार अपनी माता से कहा, कुपितो अलिक लज्जया। तो वह तो बेचारी लज्जा में पड़ी हुई थी। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं अलीक लज्जया, अलीक लीक का अर्थ है मर्यादा और अलीक का अर्थ है फालतू। उसका जो उसकी जो लज्जा थी वो बेकार थी। अथवा कुमार की तरफ से ये बात जोड़ी जा सकती है, जैसे अलीक लज्जया किम नोचस्य सद्वृत्ते। सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, वास्तव में बच्चा कह रहा, वो लड़का बोला कि अरि असद्वृत्ते, अरि दूषित आचरण वाली, क्यों व्यर्थ को दिखा रही हो कि तुम बहुत लज्जा वाली हो, तुम क्यों कपट की लज्जा दिखा रही हो, अपने दोस्त को क्यों नहीं कहती हो, आत्मवद्वं वदाश्मि, अपने दोस्त को शीघ्र ही बताओ, तो तुम्हारे लिए लाखों लोग मर गए और हमारे लिए अब मरना चालू होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसलिए क्यों नहीं बता रही, जल्दी बताओ, मैं क्या शीघ्र बताओ। तो उधर देवता और ऋषि उसको बोल रहे थे और सोम और बृहस्पति झगड़ा कर रहे थे, इधर कुमार भी लगा डांटने उसको और कुछ नहीं बोल रहे थे। तब ब्रह्मा जी उसको एकांत में बुलाए, ब्रह्मा तम रह आहुय, रह का अर्थ है रहस्य में एकांत, एकांत में ब्रह्मा जी बुलाए और सबको डांटा, ए चुप रहो, हल्ला मत करो, ए बृहस्पति चुप, और सोम दोनों को डांटे। ब्रह्मा जी का आदेश पाते ही सब लोग शांत हो जाते, उन दोनों को डांटे और ऋषियों को और देवताओं को भी कहे कि बहुत विद्वान बनते हो, चुप रहो, और उसको एकांत में बुलाए तारा को, काम रह आहु, उसको एकांत में बुलाए और सांत्वन सांत्वना दिए, सांत्वना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सांत्वना दिए, तुम शुद्ध हो, तुम महान हो, कोई तुमको कुछ भी कहे, तुम्हारा पुत्र तुमको कुछ कहे या तुम्हारा पति कुछ कहे, लेकिन तुम बिल्कुल शुद्ध हो और सम अप्राची सम्यक पूछे। एक तो सांत्वना दिए अर्थात प्रशंसा किए और बहुत अच्छी तरह से पूछे, और सम प्राचित और सांत्वन का यह भी अर्थ है कि तुम ठीक ठीक बताओ, तुम बृहस्पति से डरो मत या सोम से मत डरो, जो वास्तविक बात है बताओ, मैं हूं ना, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा और वैसे भी तुम बिल्कुल शुद्ध हो, इस तरह से पूछे। तब समय कई आह, उसने धीरे से कहा ब्रह्मा जी से, सोमस्य, बस इतना ही कहा, सोम का है ये, सोम का पुत्र है, बस ब्रह्मा जी को इतना ही। ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ थे, जानते थे, लेकिन इस बात को कहलवा लेना जरूर आवश्यक था। किसी भी व्यक्ति को अपने मंतव्य की दुहाई नहीं देनी चाहिए, मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं, पूछना क्या है, पूछना क्या है, लड़के का चेहरा बता रहा है, लड़के का सौंदर्य बता रहा है कि किसका है। कुछ लोग तो ऐसे कह सकते थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी जगत गुरु होकर के भी एकांत में ले गए। संशय वाला ज्ञान नहीं रखना चाहिए, साफ साफ बात हो जानी चाहिए, जब पूछे सांत्वना दे करके सब तरह से, तब उसने कहा सोमस्य, सोम का, यह सोम का कुमार है, सोम का पुत्र है। तब सोम कम तावद ग्रहित, तो ब्रह्मा जी फिर आए और कहे गुरु जी बेकार आप झगड़ा कर रहे हैं, आप बस शांत रहिए, आप अपनी पत्नी ले जाइए, लड़का तो सोम का है, आप विचार कीजिए, यदि सोम का आचरण दूषित होता तो क्या ब्रह्मा जी उनको कुमार दे देते। एक विचार करने लायक बात। और फिर भी जिस पद पर सोम थे उस पद पर रह नहीं दिए। इतना ही नहीं, उस लड़के के गुरु बने ब्रह्मा जी, उन्होंने दीक्षा दिया, उसको नाम रखा बुद्ध। यदि अवैध संतान होता तो ब्रह्मा जी गुरु नहीं बनते। यही सब प्रसंग सिद्ध करता है कि जो कुछ भी हुआ है वास्तव में यह जीव की इच्छा से नहीं, ईश्वर का कुछ विधान। तो ब्रह्मा जी ने दे दिया उस लड़के कुमार को और सोम उसको ले लिए। यह है परंपरा। तस्यात्मयोनिरकृत बुध युद्धत इत्यभिधाम नृप बुद्ध्या गंभीरया जेन पुत्रेण आपोडुरार्मुदम्। आत्मयोनि भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी उस लड़के का नाम रखे बुध। क्यों बुध नाम रखे? बुध का अर्थ होता है विद्वान, जानकार। इतनी अथाह बुद्धि उस बच्चे की थी कि इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम ही रखा बुद्ध। बुद्ध नाम, बुद्धया गंभीर है, गंभीर बुद्धि के कारण, अटल स्पर्शी, गंभीर अगाध बुद्धि थी। तो ऐसे पुत्र को पाकर उदुराग मुदम आप बहुत प्रसन्न हुए, सुख हुआ सोम को ऐसा पुत्र पाकर। तो इसी बुद्ध के पुत्र हुए पुरवा महाराज। इस तरह से क्रम आ रहा है, सबसे पहले गर्भोदकशायी भगवान, उसके बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बाद अत्रि, अत्रि के बाद सोम, सोम के बाद बुध, बुध के बाद पुरुरवा। इस तरह से वंश आ रहा है, ध्यान रखना चाहिए। अब पुरुरवा महाराज से किस प्रकार संतान की परंपरा चली इसे सुनिए। ततः पुरुरवा यज्ञे इलायां य उदाहृतः तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविण विक्रमान् श्रुत्वा उर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिण तदंतिक मुपेयाय देवी स्मर्शराधिता। ततः बुधात्, बुध से पुरुरवा महाराज का जन्म हुआ। पुरुरवा महाराज इला के गर्भ से जन्म लिए। इलायम यह उदाहरण है, यह कथा, यह प्रसंग इस स्कंध के प्रथम अध्याय में कहा गया है। इसको कहते हैं उदाहरण, यह उदाहरण, यह का अर्थ जो प्रसंग कहा गया है उसी समय प्रथम अध्याय में कहा गया है कि बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इला के कथा प्रसंग को प्रथम अध्याय से समझ लेना चाहिए इस स्कंध के। तो महाराज पुरुरवा रूप गुण औदार शील द्रविण और विक्रम आदि में बहुत आगे थे। रूप का अर्थ है सौंदर्य। महाराज पुरुरवा इस ब्रह्मांड में सुंदरतम लोगों में से एक थे, बहुत अधिक सुंदर। और गुण, गुण का अर्थ है धैर्य, गंभीर आदि गुण। औदार्य, औदार्य का अर्थ है बदान्यता। कोई जो भी धन मांगता था, जो भी सहायता मांगता था उसको देते थे, उदार। और शील, शील का अर्थ नम्र स्वभाव, धन आदि में बहुत बड़ा होते हुए भी कभी भी इन्हें घमंड नहीं हुआ, दर्प नहीं हुआ, शील कहते हैं इसको। और द्रविण, द्रविण का अर्थ वैभव संपत्ति, और विक्रम युद्ध में उत्साह वीरता, शत्रुओं को दमन करने की शक्ति। इन सब की गाथा श्री ब्रह्मा जी इंद्र की सभा में कह रहे थे। महाराज पुरुर्वा की प्रशंसा इंद्र की सभा में नारद जी कर रहे थे, क्योंकि पुरुर्वा महाराज भी भगवान के एक भक्त हैं, इसीलिए एक भक्त की गाथा गा रहे थे सूरत से देवर्षि नारद जी। तो ऐसा महान पुरुष, ऐसा महामानव जिसकी चर्चा देवताओं के सभा में हो रही है, और रूप गुण शील उदारता धन और रण शक्ति युद्ध शक्ति, ये अद्भुत बात छोटे छोटे श्लोकों में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। एक तो महाराज पुरुर्वा की प्रशंसा करने वाले देवर्षि नारद, और दूसरे इंद्र भवन में, इंद्र के भवन में, स्वर्ग में अमरावती में, और वह भी इंद्र के खास महल में देवर्षि नारद पुरुर्वा महाराज के गीत गा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। यह महाराज पुरुर्वा की महानता को सूचित करने के लिए काफी है। स्थान, समाज और गाने वाला व्यक्ति सब महान है। इंद्र के भवन में महाराज पुरुर्वा की जस गाथा चल रही थी। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रूप है। रूप की गाथा, विक्रम की गाथा। आज के युग में भी हम लोग देखते हैं बहुत से मनुष्यों के बारे में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई बहुत काल से, और सबसे ज्यादा भंडार भरा हुआ है अंग्रेजी में। एक स्थान पर मैं देखा लाइब्रेरी पश्चात देश में, बहुत बड़ा लाइब्रेरी, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पुस्तकालय भी इतना बड़ा हो सकता है। तो देखा एक तरफ लाइफ ऑफ ग्रेट सोल्स लिखा था, इस हाल में, इस हाल की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतना केवल उस डिपार्ट का होगा, इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि बीच में पढ़ने के लिए बेंच वगैरह रखे गए। मैं कुछ पढ़ने लगा, उतना नाम भी नहीं जानता हूँ, कौन कौन कैसे कैसे हुए, ये हुए इतिहास में, ऐसे हुए ऐसे हुए, ऐसे भरा पड़ा था ग्रंथ, बहुत अधिक भरा पड़ा था। तो जब इस तरह के गुणहीन लोगों के विषय में इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं संसार में, तो फिर महाराज पुरुर्वा के विषय में तो कहना ही क्या, उनकी कितनी गाथा थी। तो इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग में देवता इनकी गुण गाथा सुनते थे, इंद्र भगवान सुनते थे, समस्त देवता सुनते थे, और नारद जी वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित से, या अशुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों से, और यहाँ यदि हम लोग कह सुन रहे हैं तो ये कौन सी आश्चर्य की बात है। बहुत ही श्रद्धा से सुनना चाहिए, एक बहुत बड़े भक्त का, महान पुरुष का आचरण दिया जा रहा है, किस प्रकार वे इस संसार के आकर्षण में पड़ गए थे, लेकिन बाद में पुनः अपने स्वरूप में हो गए। पुरुर्वा महाराज प्रेरणा देने वाली कथा है। इंद्र भवन में जब इनकी गुण गाथा चल रही थी, इनके धन की गाथा, विक्रम की गाथा, शील उदार गुण रूप आदि की, उर्वशी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, और भगवान नर नारायण के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, भवों से, वो किसी माता पिता से जन्म नहीं ली है, डायरेक्ट भगवान ही उसके माँ है चाहे पिता है जो कुछ भी है। और उर्वशी का वर्णन किया गया है कि उसके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, और वह नित्य श्यामा रहती है, 16 वर्ष की स्त्री के रूप में रहती है बहुत काल से, बहुत वर्षों की, लेकिन बिल्कुल ज्योति रहती है। तो वह बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो महाराज पुरुरवा की गुण गाथा सुनकर उसने निश्चय किया कि मैं पुरुरवा के साथ रहूंगी। प्रश्न होता है क्यों, इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं स्मर शरारदिता, वह काम बाण से घायल हो गई थी। महाराज पुरुरवा की सुंदरता आदि की गाथा सुनकर उनके साथ रहने की उसकी सहज इच्छा हो गई, काम वासना उत्पन्न हो गई उसकी, सहवास के लिए उनके साथ रहने के लिए उसकी उत्कंठा हुई। तो इस पर महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग की देवी में एक मनुष्य के साथ रहने की कैसे उत्कंठा हो गई। मनुष्यों में और देवताओं में बहुत भेद है, मनुष्यों का जो स्टैंडर्ड है, मनुष्यों की सुंदरता, ज्ञान, धन, बल, ये सब देवताओं के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते। देवता बहुत अधिक सुंदर है, बहुत महान, बहुत बलवान, धनवान, सब तरह से। तो फिर स्वर्ग की वह देवी जो सब तरह से विलक्षण है, वह एक मनुष्य के साथ रहने की क्यों इच्छा की, और इच्छा ही नहीं कि वो आ गई बिना बुलाए। पुरुरवा महाराज ने बुलाया नहीं, पत्र नहीं लिखा, न फोन किया, फिर भी वो आ गई। यह है महाराज पुरुरवा की विशेषता। तो आ गई, क्यों आ गई, इसी का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार मित्र और वरुण दो मुनि थे। मित्र और वरुण ये देवता के लिए नहीं है, मित्र एक देवता भी है और वरुण एक देवता भी है, परंतु मित्र और वरुण नाम के दो ऋषि थे ऐसा कहा जाता है। तो कुछ टीकाकारों का कहना है कि मित्र देवता और वरुण देवता, दोनों ने एक बार उर्वशी से रति याचना किया, वे लोग उर्वशी के साथ सहवास करना चाहते थे, लेकिन उर्वशी ने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो उन दोनों ऋषियों ने साथ दिया उर्वशी को, मनुष्य तुमको भोगेंगे, ऐसा साथ दे दिया। ये दंड था, जब देवताओं के साथ तुम रति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही हो तो मनुष्य के साथ तुमको रहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा दंड था। जैसे किसी को मान लीजिए कह दिया जाए, मनुष्य की बात नहीं माना, तो कोई कहे आज से तुम मनुष्य समाज में न रहकर सुअर के साथ रहोगे, उनके ही खोभार में सोओगे और उनका ही भोजन करोगे और वही तुम्हारा स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दंड हो गया। इस तरह उन ऋषियों ने साफ दे दिया कि तुम्हें तुमको मनुष्य भोगेंगे, मनुष्य भुक्ता होगी, मनुष्य बहुवचन में नहीं एक वचन। इस साप का ऐसा प्रभाव हुआ कि उर्वशी में मनुष्य के साथ रहने की लालसा उत्पन्न हो गई। यद्यपि पुरुरवा महाराज देवताओं से भी अधिक बलवान और सुंदर थे, परंतु फिर भी एक मनुष्य थे, तो मनुष्य के साथ रहने की उर्वशी की यह कामना हुई, इस कारण से वह पुरुष भाव को प्राप्त हुई, मनुष्य भाव तक को प्राप्त हो गई। वो मनुष्य भाव का मतलब है झूठ बोलना, कपट करना, ये मनुष्य का काम है। देवता लोग झूठ नहीं बोलते, वे कपट नहीं करते, तो कपट पूर्वक बोलना, धोखा देना, ब्रह्मा जी जितना भी दोष था सब मनुष्यों के हक में दे दिए हैं, झूठ बोलना, कपट करना, जो भी है खराबी सब, और देवताओं में सब गुण रखे हैं। देवता भूल कर भी झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं कर। तो देखिए, चूंकि मनुष्य के भाव में उर्वशी आ गई है तो वह आई महाराज पुरुरवा के दरबार में, महाराज पुरुरवा के भवन में, निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्प निवरूपिणम धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके। उर्वशी डायरेक्ट महाराज पुरुरवा के अंत कक्ष में प्रकट हुई। ऐसा नहीं कि उसको द्वारपालों से परमिशन लेकर जाना पड़ा, वो तो देवी थी, कहीं भी प्रकट हो सकती थी। तो गई, प्रकट हुई, आ गई। महाराज पुरुरवा की विशेषता सुखदेव गोस्वामी बताए कंदर्प रूपिणम, ऐसा लगता था कि कामदेव ही मूर्तिमान होकर के आ गया है, इतना सुंदर थे वे। तो धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्थे तद अंतिके, पुरुरवा महाराज के पास ही वो आ करके उपतस्थे खड़ी हो गई। ललना, पूर्वशी के लिए ललना शब्द कहा जा रहा है, संस्कृत है और इसका पुलिंग होता है ललन, ललना। ललना का अर्थ है देवताओं की प्रेयसी, जिसका अनेक प्रकार से उपहार दे करके, सम्मान दे करके देवलोक में लालन होता है, सब तरह से सेवित है, वह देवी है, परम सुंदरी है। वह आज दूसरे के यहाँ आई है भीख मांगने के लिए, मनुष्य के पास आई है कि ये हमको रख ले। ललना शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, जिसका इतना बड़ा सौभाग्य कि देवता जिसके लिए तरसते हैं, पालन करते हैं उसका, सब तरह से वह आकर के खड़ी हो गई। लेकिन धृतिम विष्टभ्य, धैर्य धारण करके, धैर्य धारण का अर्थ यह है कि वो चुपचाप रही, बोल नहीं रही थी, धैर्य है। उसके मन में यह बात थी कि हमको ये रख लें और ऐसे रहूं कि ये कहें कि मैं तुमको पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो यही मुंह खोले, मैं नहीं खोलूंगी, क्योंकि देवी है। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं कहूंगी कि आपके साथ रहना चाहते हूं तो बाद में झूठी बात हो जाएगी, बाद में तो मुझे जाना है यहां से। लेकिन महाराज पुरुरवा ही बोले, इसके लिए चुपचाप रही। इसको कहते हैं धृतिम विष्टभ्य, धैर्य का अवलंबन लेकर। स्वताम विलोक नृपते हर्षेण फुल्ल लोचन वाचलक्षण वाचा देवीन हृष्ट तनुरुहा। महाराज पुरुरवा ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इतनी सुंदरी स्त्री हो सकती है। जब उन्होंने उस देवी को देखा तो हर्ष के कारण उनकी आंखें, अर्थात उनके आंखों पर, उनके वाणी पर और समस्त रोए रोए में हर्ष हो गए, हृष्ट तनुरुह। उसके सौंदर्य को देख करके उनके शरीर में सिहरन आ गई, रोए खड़े हो गए और आंखें खिल गई, बहुत बड़ा हर्ष हुआ। तो उन्होंने बड़ी सुंदर शब्दावली में उसका स्वागत करते हुए इस प्रकार से कहा, सलक्षण आवाचा, बहुत मधुर शब्द में बोले। महाराज पुरुरवा ने कहा हर्ष से, स्वागतम ते वरारोहे आश्य काम करवाम किम। संबोधन करते हैं वरारोहे, और सबसे पहले जब कहते हैं स्वागतम ते स्वागतम, तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज विधाता ने तुमसे भेंट कराया, तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा है। सु आगतम, स्वागतम, सबसे पहले यही शब्द निकला, स्वागतम, बहुत अच्छा हुआ आना। और हे वरारोहे, हे सुंदर कटी वाली, या हे सुंदर आरोह वाली, आरोह का अर्थ होता है उतार चढ़ाव, सुंदरता के अर्थ में इसका प्रयोग। आश्यकम, आओ बैठो, वो तो राजा थे, उनके पास सोने के आसन और पलंग सब रखे ही हुए थे। तो कहते हैं आश्यतम, बैठो, आसन ग्रहण करो, तुम आई बहुत अच्छा हुआ, आसन ग्रहण करो। और कर्मम कि, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ये महाराज गुरुरवा से रहा नहीं गया, वे अपने मन के भाव को तत्काल व्यक्त कर दिए। संगमस्व मया साकम रतिर्नो शाश्वती समय, सम रमस्व मया साक, मेरे साथ तुम रमण करो, सुख प्राप्त करो। सम रमस्व, सम्यक रमस्व, मेरे साथ रहो। यहाँ तात्पर्य है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। महाराज पूर्णिमा अभी विवाह नहीं किए थे, यह भी अलग जगह से सपोर्ट मिलता है। सम रमस्व मया साक, तुम मेरे साथ सुख भोगो, मेरे साथ रहो, और हमारे और तुम्हारे बीच अनंत काल तक प्रेम बना रहे। नव रति समा शाश्वती समा, समा का अर्थ वर्ष और शाश्वती का अर्थ है शाश्वत, अर्थात अनंत काल के लिए हम दोनों एक साथ रहे। अरे भाई, अनंत काल तक जिएंगे तब ना साथ में रहेंगे। ये भाषा देखिए, हम लोग शाश्वती समा का अर्थ यहाँ है कि चिर काल तक, अनंत वर्षों तक हम दोनों एक साथ रहें, मेरे साथ रहो, मेरी पत्नी बनो, ये बोल गए। और वो तो उसमें अब कपट भाव आ गया था, मनुष्य का भाव, इसलिए चुपचाप लगाई थी। उसके चाहिए था उसको कहना, लेकिन स्त्रियां बड़ी गंभीर होती हैं, वे अपने भावों को व्यक्त नहीं करती। और महाराज पूर्णिमा बख दिए, ये अपने भाव को खोल दिए। कुछ मनोविज्ञान छिपा हुआ है इसके भीतर। महाराज पूर्णिमा ये कहने लगे कि तुम मेरी पत्नी बनो और हम दोनों का संसार, हम दोनों का विहार अनंत काल तक चले। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि महाराज पूर्णिमा तत्काल ही भगवान की भक्ति को भूल गए और अपने जीवन में ये मान लिए उसकी सुंदरता को देख करके कि इसके साथ रहना, विहार करना, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ। तत्काल वास्तव में इस प्राकृत जगत का ऐसा आकर्षण है कि कितना भी ऊंची भक्ति में व्यक्ति हो, एक झटका से धराशायी हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। आज मन में हो रहा है कि भगवान का नाम जप करना ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति करनी ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे ही क्षण संसार का ऐसा आवेश होता है कि अभी सोचता है नहीं 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 नहीं, ये तो कथा कीर्तन चलता ही रहेगा, हमको अपना काम देखना है, हमको और चीज देखना है, कि ये तो लफंगे लोगों का काम है, चलो घूमते रहे करते रहे। कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है, अपना जो जरूरी काम है वो देखेंगे कि हरे कृष्ण करते रहेंगे, ऐसा सोचते, और ये हो जाता है। भक्तों में भी रह रह करके संसार का झटका लगता रहता है, करंट बहुत तगड़ा होता है। कभी मन में आता है कि अरे जब करना चाहिए, जीवन बीत रहा है, कभी ये होता है कभी वो होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही संसार के भोग अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि अनादि काल से भोगों में ही रहे हैं, इसलिए उसकी पकड़ ज्यादा है और भगवान के भजन का निर्णय बहुत कमजोर है, इसको टूटते क्या देर लगेगी। और रह रहे हैं संसार में, माया जगत में, इसलिए यहाँ माया की जो जो पकड़ है वही मजबूत रहती है। आप किसी को कहिए कि छोड़िए 7 दिन काम धंधा, भगवान की कथा सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, नाम जप कीजिए, तो हाँ चली जा काल देखब तैयार। और ये कोई कह दे कि नहीं अभी कुंभ नहा करके आए हैं और रोज रोज यही थोड़े करेंगे, कथा तो चलती रहेगी, घर का काम धंधा देखना चाहिए, बाल बच्चे तो कहेगा हाँ कितना अच्छा धर्म प्रदेश, वास्तव में आदमी उसको मान लेगा, यही संसार में चल रहा है, ये संसार का करंट लगता है, झटका चलता है। महाराज पूर्णिमा जैसा भागवत पुरुष एक क्षण में धराशायी हो गए सौंदर्य देख करके, और कहते हैं निरंतर हम दोनों साथ में रहे और हम दोनों की रति, हम दोनों का प्रेम सुख भोग सदा के लिए चलता रहे। और देखिए उर्वशी तो मानव भाव को प्राप्त हो चुकी है, तो वह बोलती है, कपट से बोले। महाराज पूर्णिमा में कपट नहीं था, वो तो जीवन ने उछावर कर दिए, लेकिन वो कहती है उर्वशी उवाचा, कस्याः त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुंदरा। जब महाराज पूर्णिमा ने बड़ा रोहे संबोधन किया, हे सुंदरी, तो सुंदरी उर्वशी भी इनको कहती है हे सुंदरा।
बस उधर से सुंदरी इधर से सुंदर, बस यही तो बंधन है। वे सुंदरी का और कहते हैं सुंदर, कौन ऐसी स्त्री है जिसका मन और जिसकी आंखें आप में अनुरक्त नहीं हो जाएंगी, कौन ऐसी स्त्री। इसी प्रकार का शब्द बोल रही हैं, ठीक इसके विरुद्ध रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के पास पत्र लिखे तो कहते हैं, कौन ऐसी जगत में स्त्री है जो विवाह का अवसर आने पर सब तरह से आपको ही अपने पति के रूप में वर्णन नहीं करेगी, कौन ऐसी स्त्री। तो है कृष्ण भावना और ये है अब संसार की भावना, भोगों की भावना। उर्वशी कार्य, कौन ऐसी स्त्री है तीनों लोक में जिसका मन और जिसकी दृष्टि आप में नहीं उगत हो जाए, कौन ऐसी जो आपको एक तक न देखना चाहे और आपके आप में ही उसका मन न रम जाए। जद अंगांतर जदंग अंतरम आसाध्य सेवते हर रिरंस है। इसका पहले वाक्य से भी अर्थ चलेगा, दूसरा स्वतंत्र अर्थ भी चलेगा। आप इतने सुंदर हैं कि आपके भुजाओं के बीच में आ करके कौन ऐसी स्त्री है जो रिदंसा से च्युत हो जाए, उसका मन या दृष्टि च्युत हो जाए। एक बार आपकी भुजाओं में आकर के ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके साथ ही सदा रहने की इच्छा न करे, अथवा केवल आपके वक्षस्थल को देख करके और स्मरण करके ध्यान करके ही रिरंसा के कारण रमण की इच्छा से मेरा मन द्रवित हो रहा है, बह रहा है। च्युते का अर्थ यह, कौन ऐसी स्त्री है जिसका मन च्युत नहीं हो जाएगा, अर्थात मेरी यही इच्छा है कि मैं कब आपके भुजाओं के बीच में आऊं और हम दोनों का विहार हो। तो इसने स्वीकृति दे दिया। केवल मैं ही नहीं महाराज, कोई भी स्त्री यदि आपको देखेगी तो आपकी पत्नी बनना चाहेगी, आपके साथ रमण चाहेगी, आप इतने सुंदर हैं। लेकिन अब भाषा बंद कर रहे, शर्त लगा रही है, क्योंकि इसको सदा नहीं रहना है, कुछ ही वर्ष रह करके इसको पुनः स्वर्ग जाना है, इसलिए भाषा बंधन कर रही है, शर्त लगा रही है। एतौ उरण कौराजन न्यासौ रक्षस्व मानव, हे मानद आपने मेरा बड़ा सत्कार किया है, मुझे स्वीकार किया है अपनी धर्म पत्नी के रूप में, तो ये मेरे दोनों मेष है, उरणक है, भेड़ के बच्चे हैं, मैं आपके पास धरोहर रख रही हूँ, न्यास रख रही हूँ, रक्षस्व इनकी रक्षा कीजिए। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन आप रक्षा नहीं करेंगे तो उस दिन मैं चले जाऊंगे, वह इस बात को नहीं समझे। उरणक का अर्थ होता है मेष, स्वर्ग से दो मेष कि ये कौन सी बड़ी शर्त है और इसको क्यों रख रही है। तो उसने कुछ ऐसा नाटक किया उर्वशी ने कि मैं इनको पुत्र जैसा मानती हूँ, स्नेह के पात्र है, आप इनकी रक्षा कीजिएगा, जब पोषण कीजिएगा नहीं। स्पष्ट हो रहा है कि वे राजा यह हो चुके हैं होंगे, जिनके विषय में सुनना।